ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सत गुरु बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों से वायदा कर रहा हूं। क्या वायदा करते हैं बाबा? बाबा ने कहा है, तो मुझे बुलाते थे ना कि हमें मुक्ति दो, हमें पावन बनाओ, तो मैं तुम बच्चों को अवश्य पावन बनाता हूँ, अवश्य मुक्ति देता हूँ। इसलिए शिव का नाम क्या है? एक नाम है ना, मुक्तेश्वर। तो मुक्ति देने वाला ईश्वर, फिर वो महाकाल भी है। तो महाकाल अर्थात सबको काल से मुक्त करने वाला, सबको मौत दिलाने वाला। तो भगवान कहते हैं, घर ले जाऊंगा माना सबको मौत मिलेगा ना, इसीलिए महाकाल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तो तुमने ही तो कहा मुक्ति दो, मुक्ति दो, या बहुत दुख है, मुक्ति दो, बस हम मोक्ष में जाएं, मुक्ति में जाएं। तो मैं ये इसीलिए आया हूं, अब चलो घर। तो कई बच्चे आनाकानी करते हैं, नहीं 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 अभी नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं, या तो प्यार है या तो मार है। प्यार से चलना हो तो चल सकते हो, और उसके लिए मुझे याद करो। अगर नहीं प्यार से चलोगे तो मार देकर भी घर जरूर ले जाऊंगा। जैसे छोटे बच्चे से काम करवाना, पहले तो प्यार से कहेंगे, फिर नहीं मानता है तो फिर मार भी मिलती है। तो बाबा कहते, बाबा तो मारेंगे नहीं, लेकिन धर्मराज की सजाएं तो खाएंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते। इसीलिए कहा जाता है ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो चाहे देर से न्याय मिले लेकिन अंधेर तो नहीं है ना। तो भगवान सबके न्यायकारी है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे ही कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। भगवान को थोड़ी दोष दे सकते हैं। तो आज बाबा ने बहुत कुछ ये इस अनुसार कहा है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिस कहो, गारंटी कहो, या बाबा हम बच्चों से वायदा करते हैं, मैं तुमको जरूर घर ले जाऊंगा। तो आज 2/5/2024 है। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। बुलबुल होती है ना, बहुत मीठी आवाज होती है और बहुत सुरीला गाती है। तो ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। कल बाबा ने कहा, भ्रमरी बन करके भू भू करो और आप समान बनाओ। आज बाबा कहे कि ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? जांच करो। प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकते? इतना बड़ा कार्य भगवान करते हैं, मनुष्य थोड़ी कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉमिस करते हैं? उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। बच्चों ने कहा ना, हमको घर ले चलो, मुक्ति दो। मुक्ति दो का मतलब क्या है? घर ले चलो। तो भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो पावन नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना ही है, कोई चाहे या न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा, आपकी इच्छा हो या न हो, इच्छा होनी चाहिए यहाँ घर जाना है। उसके लिए बाबा कहते पावन बनो, मुझे याद करो। तो इच्छा नहीं है तो नहीं बनेंगे पावन, याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहे तुम जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूं। जब 60 वर्ष की आयु होती ना, कहते हैं 60 लगी लाठ, माना अभी बूढ़े होने लगे, तो फिर बूढ़े होने लगे माना अभी जाना है, ये सोच चलता है। 60 बरस तक सोच नहीं चलता, अभी तो जवान है समझते हैं, लेकिन 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं तो बस समझते अभी जाना है। तो बाबा कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है, ऐसे नहीं केवल 60 वर्ष से ऊपर जो है उनको ही जाना है। तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूं। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो ये जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इसका मतलब कि ये सब गुण धारण करने हैं, सर्व गुणों को धारण करना है, कोई भी ऐसा गुण न रहे जो धारण न हो, ये सब गुण धारण करने हैं। तो जांच करनी है हमारे में ये गुण है ना, हिस्ट्री ऑल के बाहर लिखा हुआ है 36 गुण। तो रोज अपनी चेकिंग उन गुणों को देखकर कर सकते हैं, मेरे अंदर ये सारे गुण हैं। अगर लगता नहीं है तो धारण करना है, ये लक्ष्य रहे। तो बाबा कहते हैं जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा, जो बनना होता है वहीं ध्यान जाएगा। तो हमें सर्व गुण संपन्न बनना है तो गुणों पर ध्यान जाएगा, कौन से गुण हमारे अंदर नहीं है वो धारण करने हैं, तो वहीं ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई अभी बना नहीं है, सब पुरुषार्थी है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, संपूर्ण माना संपूर्ण रोशनी उनकी, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण रोशनी गुणों की। तो ये चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहां भी देखा जाता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, देखना पड़ता है क्योंकि सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझ सकते हैं, एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा देखते हैं मेरे अर्थ बच्चे क्या सर्विस कर रहे हैं, तन मन धन मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प शक्ति संबंध संपर्क सब के द्वारा हम बाबा कहते हैं सेवा करनी है। तो मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है, बगीचा है ना, ये बगीचा है, फूल तो सब है। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को भी जानते हैं, अवस्था माना अंदर की कितनी खुशी है, क्या स्थिति है अंदर की, हर एक अपना अपना जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है, कितनी है मेरी जीवन अति इंद्रिय सुख की, हर एक को अपना अपना पता चलता है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है, जितना याद करेंगे माना उतना घर जाने घर के नजदीक जाएंगे, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहेंगे, बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूं। कौन सा उपाय? याद की यात्रा, यही उपाय है। हर एक अपने दिल से पूछे हमारे याद का चार्ट ठीक है। हर एक अपने दिल से पूछते हैं ना, मेरी याद का चार्ट ठीक है, और किसको आप समान भी बनाता हूं, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पेरेंट्स है कोई क्या है, अब कोई तो पिजन है कोई पैरेट है कोई बुलबुल है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा हर एक बात देखते हैं, क्योंकि कोई पैरेट्स है माना तोते हैं, जो सुना वो बस उतना ही दूसरों को सुना सकते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते। कोई तो पिजन है कबूतर है, बस ऊ ऊ ऊ ऐसे खाली करते रहते, हाँ बाबा हाँ बाबा बस, पर वो सुनाते नहीं है किसी को। तो बाबा कहते हैं कोई पैरेट्स है कोई क्या है, तुमको तो कबूतर नहीं पैरेट वाले बनो। हाँ पैरेट बनना है, दूसरों को सुनाना है, पर कबूतर तो कुछ सुनाता नहीं है, तोता तो फिर भी कुछ तो सुनाता है ना, कबूतर तो कुछ भी नहीं सुनाता, उसके मुख से खाली ऊ निकलता है बस। तो पैरेट तोता बनना है तो अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, देवताएं भी तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है, ऐसे नहीं कोई दूसरे आएंगे जो देवता बनेंगे, तुम ही बनेंगे जो बाबा के बच्चे बनते हैं। तुम्हारे सेवा और सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है, यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भाती बनने, मेंबर बनने। हाँ तो दैवी घराने का मेंबर बनने तुम हम सब यहाँ आते हैं, वहां भी तुम दैवी घराने के भाती हो। सत्युग में वहां तुम्हारे में, सत्युग में क्या होगा, तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवास भी नहीं होगा। राग द्वेष होगा तो झगड़ा होगा ना, लड़ाई होगी आवाज होगा, तो वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवास भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए, भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है, अब बीमार है कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन लेटे लेटे भी बाबा को याद तो कर ही सकते हैं ना, तो इसीलिए मुख चलाने की बात नहीं, भले लेटे रहो तबीयत ठीक नहीं है परंतु याद तो कर सकते हो। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस, हाँ हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने, कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते, इतना नहीं बुद्धि में बैठता है, इतना ज्ञान धारण नहीं होता है, तो बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, याद करो, बाबा की याद में तो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबर वार है। हाँ, बनना जरूर है, बनना तो नंबर वन है, परंतु बाबा जानते हैं सब नंबर वार है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु और कोई की याद नहीं रहती होगी, एक बाप के संग जोड़ने वाले तो सब हैं, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, थक नहीं जाना है। चलो अभी सब संग तोड़े एक संग जोड़ा, फिर बात कुछ समय के बाद थक गए, हाँ फलाना संग कर लिया तो बाबा, या फिर बाबा की याद भूल गई, तो इसलिए बाबा कहते हैं पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती है, एकांत में चले जाओ बाबा की याद में, भले उस समय किसी को ज्ञान नहीं दे सको, मत दो, जरूरी नहीं है कि सबको देना ही है, बाबा की याद में मस्ती से जा सकते हैं। मुख चलाने की भी दरकार नहीं है, सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं बाबा। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है, जैसे सतो प्रधान अवस्था में आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है समझाने में, घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई विकार होगा, कोई कमी होगी, कुछ भी ऐसा हो, ऐसी त्रुटि होगी तो बाबा कहते ये गड़बड़ है, तो देखना है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। अब क्या है हीरे का दृष्टांत? हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है, तो अपनी जांच करने लिए ये हीरे का दृष्टांत है। हीरे को कैसे जांचते हैं? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और हीरे में कितना दाग है वो देखते हैं, और वो दाग जो अगर है तो फिर तराशते हैं, तराश करके वो दाग निकालते हैं, हीरे में चमक लाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो, आत्मा खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास है, माना बुद्धि से समझ तो सकते ना, ये मेरे अंदर कमी है, ये खामी है, ये कमजोरी है, तो ये मुझे बदलना है। तो बाबा कहते हैं अपना ही मैग्नीफाइंग ग्लास बनो, तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है। मेरे में दे अभिमान रिंचक भी तो नहीं है, रिंचक भी नहीं होना चाहिए दे अभिमान। भल इस समय सब पुरुषार्थी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, लक्ष्य तो है हमको क्या बनना है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो यह पैगाम सबको मिल जाए। चार पेज का फिर डालने लगे थे, खर्चा तो आता था, फिर स्पॉन्सर करते थे तो चार पेज में अपने चित्र वगैरह सब डालते थे, अखबारों में आता था। तो बाबा कहते थे यह पैगाम सबको मिल जाए, बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती ही है कहाँ? नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। क्या कैसे, क्या प्रूफ है कि एक भी पवित्र नहीं है? अगर आत्मा पवित्र बन गई तो इस अपवित्र शरीर में तो रह नहीं सकती है, इसलिए शरीरों में है माना अभी तक कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तो एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है, वैसे भी छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, सतयुग में गर्भ महल है ना, तो फिर गर्भ महल में बैठी सतयुग से, सतयुग में जब आई, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुख धाम में आएंगी, वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए, भले गर्भ महल में बैठेंगी लेकिन पद तो ऊंच पाना है ना। हरे गर्भ महल में बैठेगी आत्मा, जितनी भी आत्माएं आएंगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि राजकुमार होंगे, प्रजा भी होंगे, दास दासियां भी होंगे, पर होगा तो सबके लिए गर्भ महल ना। तो बाबा कहते हैं वहां गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए, ये पढ़ाई है। अभी नरक वैशालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है, आज बाबा ने कितनी बार कहा सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे ना। जिनका पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं होगा वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, भाई मैं नहीं समझता हूँ मैं कोई राजकुमार राजकुमारी बनूंगा या बनूंगी, मैं तो प्रजा में जाऊंगा। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। अगर राजाई में आना है तो लाइन एकदम क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। अब ट्रेन को भी लाइन क्लियर चाहिए ना, अगर लाइन क्लियर नहीं होगा तो रुकती रुक रुक करके ही आएगी, तो मंजिल पर तो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए, तब कहेंगे लाइन क्लियर। इसको कहा जाता है, बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। पवित्र बेगर ऐसे ही नहीं खाली भिखारी रूप नहीं, लेकिन फकीर फकीर होते थे ना, वो पवित्र रहते थे फकीर लोग, और खूब सूफी संत की तरह होते थे, फकीर कहते थे उनको, तो वो बहुत अच्छा ज्ञान देते थे और बिल्कुल कोई से कनेक्शन नहीं, कोई देहधारियों से कनेक्शन नहीं। तो इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद न रहे, ये तो पुराना छी छी शरीर है, यहां जीते जी मरना है ये बुद्धि में रहना चाहिए, यहां जीते जी मरना ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको वापिस घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया। किसी को भी दुनिया में अपना घर कहाँ याद है, भले कहते मुक्ति मिले मोक्ष मिले, हम ना आए संसार में वापस, लेकिन वो घर याद थोड़ी है। अब फिर बाबा ने याद दिलाया है घर। अभी ये नाटक पूरा होता है, बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो, सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबके वापस जाने का समय आया है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते नहीं थे, वो तो इतना ही कह देंगे दुनिया में वानप्रस्थ कौन, रिटायरमेंट, 60 बरस का हुआ, रिटायर्ड हो गया तो वानपरस। लेकिन वानपरस का सच्चा अर्थ क्या है? वाणी से परे जाना, परम धाम जाना, इसको कहेंगे वानपरस। तो बाबा कहते हैं वानपरस किसको कहा जाता ये भी तुम जानते नहीं थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। भाई अभी तो रिटायर्ड हो गए, बस अभी तो और कुछ क्या धंधा है, एक दिन शरीर छोड़ना है तो गुरु करते हैं। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे, तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो। वो भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कराते हैं गुरु, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब वो बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानपरस्त अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, दुनिया में मनुष्यों को दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हो, करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है नहीं। हाँ, घर जाना चाहते हैं पर अकल तो है नहीं। कौन सी अकल नहीं है? कि उसके लिए पवित्र बनना है, उसके लिए परमात्मा को याद करना है, उसके लिए याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते हैं अकल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, वो इतना ही कहते हैं, पर अकल नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? शांति तो मिलेगी शांति धाम में, पर उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं अकल नहीं है। कहते हम आत्माओं को अब शांति चाहिए, तो बाप कहते हैं अच्छा कितने समय के लिए शांति चाहिए? यहाँ तो हरेक को अपना अपना पाठ बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते हैं। पाठ बजाएंगे तो आवाज में तो आएंगे ना, तो ऐसे थोड़ी शांति चाहिए तो बस शांत बैठे रहो सारा दिन, कर्म तो करना है ना। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई है, मेहनत करते करते। कौन सी मेहनत कराई? भक्ति में कितनी मेहनत करनी होती है, तीर्थों पर जाना, यहाँ जाओ वहां जाओ, हाँ क्या कितना भटकते रहे। तो बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हैं। अब जो शांति धाम का मालिक है, कौन है शांति धाम का मालिक? स्वयं भगवान। वो आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए। तो भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? मुक्ति के लिए तो चलो मेहनत करते बस जाएं, हमको नहीं आना है दुनिया में। लेकिन ये किसी के भी दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं, हम सतयुग में जाएं, ये किसी के भी दिल में नहीं आएगा, बस मुक्ति में जाएं। सब वानपरस में जाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, घर जाने लिए। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, तो मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुक्ति में तो सबको जाना ही है, चाहे पुरुषार्थ करो या ना करो, इसीलिए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है। परंतु हमारा पुरुषार्थ है जीवन मुक्ति में उच्च पद पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। सुख धाम में तब आएंगे जब पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, तो वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। तो भगवान भी प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं भगवान, क्या कि बच्चों से वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। नहीं चले श्रीमत पर तो भी शांति धाम तो सबको जाना ही है, मार खाकर तो जाएंगे। कोई चलना चाहे व न चाहे ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो न करो मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सत्युग में जाते हो बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। सुना भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहो या न चाहो तो भी मैं ले जाऊंगा। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट करके भी ले चलूंगा। देखो बाबा कितना कठोर है ना, लेकिन फिर बाबा कहते मैं नहीं करता हूं वो धर्मराज करेगा, मैं नहीं करता हूं। बाबा तो प्यार का सागर है। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, न्याय तो सबको मिलना है ना, तो इसीलिए मार पीट भी तो मिलेगी ना, सजा तो मिलेगी। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे, चलो त्रेता के अंत में आए क्या सुख पाएंगे, अगर वो क्या सुख है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप सबको कहते हैं जरूर जाना है, शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना, शिव बाबा को बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। महाकाल को बुलाना माना महाकाल को कहना कि आओ महाकाल हमको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छी छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस छी छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर को बाबा कितना याद करते हैं। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाला वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। हाँ, बाप दादा माना इनके शरीर में बाप विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। आदि देव को जब देखते हैं माना बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। संगम युग पर जो हमने पाठ बजाया उसका यादगार है दिलवाड़ा, उसकी निशानी यादगार खड़ा है। कैसे क्या क्या निशानी है, महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं। देखा ना दिलवाड़ा मंदिर में जो पहला कमरा है, जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहला कमरा कमरे में हाथी घोड़े और पैदल चलने वाले भी है सब। तो बाबा कहते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं। अब वो है जड़, ये है चैतन्य, ऊपर में वैकुंठ भी है, तपस्या कर रहे हैं नीचे और ऊपर में वैकुंठ है। तुम मॉडल देखकर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो कल्प कल्प ये मंदिर बनता है ऐसा ही। हाँ ऐसा ही बनता है जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंछ पड़ते हैं, क्या मूंछ पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ वही रिपीट होता है। तो कल्प पहले भी ऐसे ही मंदिर बना था और बाबा कहते तुम मंदिर देखकर आते हो तो पता है कि ये कल्प पहले भी ऐसे ही मंदिर बना था, फिर अभी बना, अभी हम देखने जा गए हैं। कोई कोई मूंछ पड़ते हैं कौन सी बात में, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी। हाँ फिर बनेंगी ये जो ओम शांति भवन, ये पहाड़ था, ये टूट गया, अभी फिर बनेगा? हाँ, सब कई पूछते थे। तो टूट फूट गई फिर बनेगी, कैसे होगा? ये ख्यालात करने नहीं चाहिए, ये ख्यालात मत करो, हो जाएगा ड्रामा अनुसार, जो भी होगा वो होगा। तो ये ख्यालात करने नहीं चाहिए, अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, वो फिर कैसे आएगा? अभी तो स्वर्ग नहीं है ना, तो था तो सही ना, तो वही स्वर्ग, जैसे कल्प पहले स्वर्ग था, वही फिर स्वर्ग आएगा ना। ये कलयुग है, पहले कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, वैसे ही फिर वही कलयुग आया है। तो अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, वो फिर कैसे आएगा? ये पहाड़ भी फिर से आएंगे। पुरुषार्थ से सब बनना है, सब बनता है ना पुरुषार्थ से। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए, कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, खास ड्रामा की पॉइंट पर कई मूंझते हैं, और मूंझने के कारण फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है, वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे वहां, वो दुनिया ही सतो प्रधान होगी, वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शुभी रस पीते हैं। तो ये शुभी रस जो पीते हैं, यहां संदेशियां बताती थी जब वो आती थी ना, तो वो फिर उनको समझो कुछ उनको खिलाते थे, कहते नहीं मेरा पेट भरा हुआ, तो पेट कैसे भरा है? बाबा ने वतन में हमको शुभी रस पिलाया। अब शुभी रस कहां से आया वतन में? वो तो स्वर्ग में है, पेड़ तो स्वर्ग में होंगे ना, आम का रस शुभी रस उसको कहते थे। तो ये कोई सूक्ष्म वतन में थोड़ी होगा, लेकिन साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते हैं वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, सत्युग का साक्षात्कार करते हैं, शुभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में। आम होंगे ना सत्युग में तो बहुत अच्छे आम होंगे, अभी तो कलयुग में क्या होंगे, है लेकिन फिर भी आम है सभी फलों का राजा, तो सत्युग में कैसे होंगे आम? तो बाबा कहते हैं बाकी ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता, ये कैसे, या प्रश्न ही पूछते रहेंगे, तकदीर में नहीं है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में भी नहीं आते हैं वो फिर कैसे होंगे? मेरे को किसी ने दिखाया एक सच्चा हीरा, मैंने कहा ये हीरे और वो नकली हीरे में कोई फर्क तो दिखाई नहीं देता, उसने पहना हुआ था। तो कहा नहीं ये सच्चा हीरा है। कहा ठीक है होगा, लेकिन बाबा कहते अभी तो हीरे दिखाई नहीं थे, एक हीरा किसके पास था तो कितना उसको नशा था, हाँ ये मेरे पास ये सच्चा हीरा है। बाकी सत्युग में तो हीरों से तो खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं हीरे जवाहरात जो अभी देखने में नहीं आते हैं वो फिर कैसे होंगे, ऐसे प्रश्न करते हैं, पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का, हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो, तुम सब जान समझते हो चक्रवर्ती राजा हमें बनना है, तो समझते हो तब तो कहते हो। क्या कहते हो? चक्र फिरता है हु बहु, तो इसलिए क्या कहते हो? बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, चक्र को पूरा समझा है, ड्रामा को पूरा समझा है, तभी तो कहते हो ना कि हाँ बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र है, हमारे जो चित्र है, बाबा ने कितने चित्र बनवाए हैं, ये इनमें तो कमाल है, ऐसे चित्र तो कोई बना नहीं सकता। कल्प वृक्ष जैसे बाबा ने बनवाया, सृष्टि चक्र जैसे बाबा ने बनवाया, ऐसा चित्र तो कोई और बना भी नहीं सकता। इनमें तो कमाल है, कितना रुचि से आकर के देखते हैं लोग तुम्हारे चित्र, रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहां भी कोई ने नहीं देखा है ऐसे चित्र जो हमारे पास है। न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर न सके। ये चित्र तो खजाना है, खास बाबा त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, ये तो ओरिजिनल चित्र है। बाबा कहते हैं ये खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनते हो? तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। कौन सा कदम? ये थोड़ी ये कदम, हर कदम में पदम। कौन सा कदम? पढ़ाई का कदम। तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, जितनी पढ़ाई पढ़ते जाते, गहराई में जाते हो, उतने कदम उठा रहे हो। कदम उठा रहे हैं ना, तो कदम उठाना माना पढ़ाई के कदम, तो इससे पदम मिलते हैं। तो पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय हो, इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सत्युग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड। हाँ, सत्युग में सुंदर थे, गोल्डन एजेड। कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड। हर चीज सतो प्रधान होती है, फिर रजो तमो में आती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? कई कहते ना, अगर है ड्रामा में तो फिर क्यों पुरुषार्थ करे। लेकिन ड्रामा में पुरुषार्थ भी तो नोंद है ना, खाली प्रारब्ध थोड़ी नोंद है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं है, बाबा को याद करना क्या तकलीफ है। मुरली छपती है, हाँ मुरली छपती है, सबको मिलती है, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। अभी तो है ना करोड़ों, हर एक के मोबाइल में मुरली है, तो कितने करोड़ों करोड़ों मोबाइल होंगे, तो उन सब में मुरली आती तो होगी ना, अगर ये ऐप डाले तो। तो बाबा कहते आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे, क्यों खर्चा तो होता है ना, तो बच्चे कहेंगे, अभी कैसे बच्चे ही मददगार बनते हैं, बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वो यज्ञ में लगा दें। रख कर क्या करेंगे? तो बच्चे सहयोगी बनते हैं। कागज पर खर्चा तो होता ही है ना, कागज स्टैंप। पहले तो मुरलियां बहुत जाती थी, अभी तो कम होती गई, इतनी तो नहीं, गांव गांव में तो जाती है, क्योंकि वहां तो ये सब फैसिलिटी नहीं है। बाकी तो विदेश वालों ने तो कह दिया हमको मत भेजो रोज रोज की मुरली, तो इतनी पोस्ट जाती थी विदेश में भी, तो वहां भी कितना स्टैंप का पैसा लगता होगा ना। तो बाबा कहते हैं आगे चल करके लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है यज्ञ में लगा दें। रख कर क्या करेंगे? आगे चलकर देखना क्या क्या होता है, कैसे ये यज्ञ चलता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी। सब जगह देखो, जहां जाओ कहेंगे हम रिट्रीट सेंटर बना रहे, हमको जमीन मिली, हमको जमीन मिली, हाँ जमीन मिली है, देखो ना क्या बिल्कुल होड़ लगी हुई है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल भी होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस शरीर को भी भूल, पूरा पवित्र बेगर बनना है। इस शरीर को भी भूल, पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भाती बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अति इंद्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान, हाथ और साथ, आज का वरदान है हाथ और साथ। क्या है इसका अर्थ, बाबा ने बताया, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ तो साथ है बुद्धि द्वारा और सहयोग है हाथ, तो बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, हाथ में हाथ दिखाते, इतने हाथ एक साथ जुड़े हुए दिखाते कि हम सब एक दो को सहयोग देने वाले हैं। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ। हाँ, सबका हाथ फिर बाबा के साथ, हाँ, तो ये हाथ में हाथ माना सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ याद में रहना, और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन, गॉडली गार्डन हाँ बगीचे में, गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं, हाथ में हाथ देकर साथ में चल रहे हैं गॉडली गार्डन में। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, कैसे मिलेगी दुआएं, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये है दुआओं का खाता जमा करने का साधन। आज का अव्यक्त इशारा है ना, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब खुशनुमा बनो। तो 2 तारीख का इशारा, आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है, इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको आप खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा, इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो, दान करने से मन की प्रसन्नता व संतुष्टता का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो बाबा को भोग लगेगा।